शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब आत्मा का स्वधर्म शांत है, शांति है। घर हमारा शांति धाम है। शांति धाम में जाना माना अपना घर, बाप और अपनी स्मृति रहना। आज योगा डे भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा, योग, राजयोग, मेडिटेशन, याद की यात्रा और स्मृति। स्मृति क्या है? बेहद का जो हमारा सौभाग्य है, बेहद का राज्य है, बेहद की प्राप्ति है, स्वधर्म है, ये याद रहे। अवेयरनेस रहे इस पुरानी दुनिया से, बेहद का वैराग, फिर त्याग और तपस्या स्वाभाविक रहेगी। और याद रहती है प्राप्ति के आधार से, जैसे दुख की बात, दुख से मुक्त होने की याद रहती है, अथवा दुख भासता अथवा अच्छा नहीं लगता, पर सुख की इच्छा रहती है। और संगम युग पर ही बाबा चाबी दे देते हैं हमको, सब प्रकार के सुखों का खजाना भी देते हैं। साधन और सिद्धि क्या है वो भी बताते हैं। और स्मृति भी दिलाते हैं कि ना केवल आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहे, पर समय की भी स्मृति हो। अब घर जाना है, और आना है तो कौन सा भाग्य से जागृत होकर के आना है, कब आना है, कहाँ आना है, ये सब बातों की पहचान बाबा हम बच्चों को रोज याद कराते रहते हैं और गहराई से उसको समझाते भी रहते हैं, जिससे ही हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। हमने भगवान से पाया क्या, उसका अनुभव क्या है, फिर विस्मृति हुई तो उसका अनुभव क्या है, अब फिर से स्मृति और प्राप्ति तथा संबंध, संबंध और प्राप्ति की स्मृति सदा रहे तो निश्चय नशा और निशाना तीनों बैलेंस्ड होंगे। तो एक तरफ विस्मृति, दूसरी तरफ स्मृति। जितनी जितनी वैराग वृत्ति और पुरानी दुनिया को देखते नहीं देखेंगे, पर उसके लिए नई दुनिया देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। जैसे कोई गरीब जब शाहूकार बन जाता है, गरीबी भूल जाती है। बीमार से हेल्दी बन जाता है तो दुख से बीमारी याद नहीं करता, सुख से याद करता है कि बीमार बीमार था, बहुत अच्छा हो गया, हेल्दी बन गया। तो क्या स्मृति और विस्मृति, किससे देखते हुए नहीं देखे। तो आज बाबा के 21 जून के मधुर माँ वाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम्हें स्मृति आई क्या कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया है? अब जाते हैं अपने घर जिसको कहते हैं शांति धाम। बाकी घर जाने में थोड़ा समय है, स्वधर्म में अभी टिक जाना है और स्वधर्म की शक्ति से ही आत्मा शांति धाम में जाके और स्मृति से प्राप्ति की स्मृति से ही आने का द्वार पवित्रता और प्राप्ति है, जाने का द्वार बेहद का वैराग और विस्मृति है, पुरानी दुनिया को विसारना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, उन्हें बेहद का वैराग होगा, तीसरी बात धंधे धोरी में भी हल्के रहेंगे, परिवार व्यवहार व्यापार करते भी बंधन मुक्त होंगे, हल्के रहेंगे। बुद्धि की बात फिर इधर उधर झरमुई झरमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। चेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। इस दुनिया की पुरानी वस्तु कोई भी हमारी नहीं है, अपनी नहीं है, मेहमान रहता है, एंजॉय करता है अथवा यूज करता है पर साथ नहीं ले जाता। तो दुनिया की पुरानी कोई भी चीज, पुराना कोई भी संस्कार साथ नहीं ले जाना है। रावण की प्रॉपर्टी साथ नहीं जाएगी। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। घर कहाँ है? तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कैसे और कहां से मिलेगी, ये कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो हम अपने घर जाने के, अभी अपने घर जाना है, बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र वहां जाएंगे, शांति धाम जाएंगे। नंबर वार वहां है शांति धाम, और ये है फिर दुख धाम। तो शांति धाम दुख धाम से वैराग, शांति धाम घर की याद और सुख धाम की प्राप्ति का लक्ष्य। ये याद करना सहज है ना, कोई भी बूढ़े हो या जवान हो ये तो याद कर सकते हैं ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी रहेगी, स्मृति रहेगी, हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, सुदर्शन चक्रधारी कैसे चक्कर लगाया। वो भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। ये ज्ञान मार्ग की बातें हैं, घर जाना है, स्मृति, 84 जन्मों की कहानी। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है, कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। ये एक यही है कि अब हम शांति धाम जाएंगे, मेरे सार यही है, अब हम शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे, इस पुरानी दुनिया में नहीं आएंगे, सुख धाम में आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया बनाने, पावन दुनिया में ले जाने। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं, पवित्र दुनिया में सुख और शांति है, और शांति धाम में सिर्फ शांति है, आवाज नहीं है, एकदम शांत निर्वाण धाम। यहां तो बहुत हंगामा है, यहां तुम मधुबन से जाएंगे, अटेंशन क्या रखना है, अपने घर तो वापस जाएंगे तो क्या टेंशन रखना है, मधुबन याद रहे, शांति धाम याद रहे, सुख धाम याद रहे। तो सावधान करते हैं, यहां से तुम अपने घर जाओगे तो बुद्धि में झरमुई झंगमुई, अपने धंधे तरफ बुद्धि चली जाएगी। यहां तो वो झंझट नहीं रहती है, तो चांस है अनुभव का, शांति धाम का, बाबा से सुख मिलन का, सुख की प्राप्ति का। यहां पाठधारी बने हैं, तुम जानते हो हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं, और कोई को ये पता नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं, कोटों में से कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे, करोड़ों में से कोई आते हैं, सुनते हैं, वीके बन जाते हैं। पढ़ाई कितनी कौन पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब उसका स्वरूप बनना, उसका अभ्यास करना, समझ जाना बाबा क्या पढ़ा रहे हैं। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो कितना लड़ाई झगड़ा है। इनको क्या कहेंगे आपस में, लड़ाई को क्या कहेंगे? हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? आदमी आदमी को मार रहा है, आदमी आदमी को खा रहा है, आदि आदमा आदमी आदमी को दुख दे रहे हैं। भूल गए भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ करते हैं, कभी खून भी करते हैं सिर्फ मलकियत के लिए, अटैचमेंट मोह लोभ उसके कारण हिंसा करते हैं। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो, हम आत्मा को बाबा करके पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक हमको पढ़ाते हैं क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई जानते नहीं है, अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, किस चीज का रचयिता नहीं है और किसका रचयिता है? रचयिता नहीं है पर रचयिता है। ये जो प्रकृति की हद की सृष्टि है ये परमात्मा नहीं रचता, शरीर नहीं रचता, ये प्रकृति का आर्टिस्ट प्रकृति का कर्तव्य है। पर सुख की दुनिया परमात्मा रचता है। अभी तुम जानते हो बाप स्वर्ग का रचता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा और प्रकृति तो अनादि है, यह प्रकृति की सृष्टि है। तो बाप कहते हैं सृष्टि को रचने वाला नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे नहीं है? ये सृष्टि तो अनादि है, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहां कोई खंड नहीं था, यानी ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग नहीं थे, यहां तो बहुत खंड है, एक कॉन्टिनेंट में भी कितने कितने अलग से। हाँ कोई समय था जब एक ही धर्म था और एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है, जब बाबा ने समझाया तो समझ आती है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो क्या वहां कहेंगे हमारा धर्म आदि सनातन देवता धर्म है? एक ही चीज है तो कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है। कपड़ा है कहेंगे मेरा कपड़ा ले आना, मेरा ब्लाउज लेके आना, साड़ी ले आना, एक ही है अगर एक ही कलर है। दूसरी कलर है तो कहेंगे सब रंगीन लेके आना, पीली काली लेके आना, है ही एक, अनेक है ही नहीं। बुद्धि में बैठता है। पहला तो ये नहीं कहेंगे कि वहां हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ये सनातन धर्म भी यहां कहते हैं, पुरातन हो गया सत्वा आदि के समय को याद करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सनातन धर्म कहते हैं, किस हिसाब से सनातन कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से, समय के हिसाब से। सनातन देवी देवता धर्म के तो तुम हो, परंतु पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजोतम में होते गए, बदलती गई स्टेज। तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था, पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे, अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तभी तो तुम पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की तो बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन गए हो, तो पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर के हमको फिर से पावन बनाओ। तो बाप फिर पक्का कराते हैं, तुमने कहा हमको आकर के पावन बनाओ, तो बाप कहते हैं कि अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं पवित्रता, परंतु 21 जन्म के लिए तुम सुखी हो जाएंगे। अपवित्रता के कारण दुखी हैं, तो कहते आके पावन बनाओ, क्योंकि दुख से मुक्त करो। तो 21 जन्मों के लिए पवित्रता के बल से सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवताएं थे ना, अब फिर बनो। कैसे बनेंगे? पवित्र बनो। कितना सहज है, बहुत भारी कमाई है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों ने तो कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह सारी भावी ड्रामा की, अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। अब ये पुरुषार्थ ही पापों से मुक्त होने का कर रहे हो, तो ध्यान क्या रहे? और कोई नया पाप ना हो, नया कर्म का हिसाब किताब ना बने। तो छूट रहे उससे, फिर क्यों पकड़ते हो दूसरे? ध्यान रहे कोई पाप ना हो, देह अभिमान में आने से फिर और विकार हो आते हैं, खाली काम नहीं, क्रोध मोह लोभ सब विकार आते हैं। इसीलिए देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज से मोह न हो, इस पुरानी दुनिया से वेद का वैराग्य हो। बस देखते हो पुराने पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। अब जाएंगे अपने नए घर में तो सामने नया ही देखेंगे ना। जब तक ये पुराना खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए भी याद किसको करना है, तीसरे नेत्र से किसको देखना है, नए को देखना है, नए को याद करना है। दूसरी बात, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया, दुख देना भी पाप है, दुख लेना भी पाप है। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है, कोई कर्म किया तो चेक करो, गुटखा क्यों खाते हो, कंफ्यूज क्यों होते हो। पूछेंगे नहीं, क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे ना, गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे, वो कंफ्यूज होंगे तो भारीपन रहेगा, बाबा क्लियर कर देंगे तो हल्के हो जाएंगे। तुम बहुत भारी हो, यानी वो कर्म का हिसाब किताब बुद्धि में रख के बुद्धि को बहुत भारी कर दिया। पाप होते गए, बोझा चढ़ता गया तो भारीपन आ गया, फरिश्ता नहीं है, लाइटनेस नहीं है। ये पापों का बोझा बड़ा भारी है और 21 जन्म के पाप इकट्ठे हुए हैं। तो बाबा अब 21 जन्म फिर पापों से हल्के, 63 जन्म का पाप है, 21 जन्मों के लिए फिर पापों से हल्के हो जाओगे। बोझ है एक जन्म जन्मांतर का सिर पर। तो जितना याद में रहेंगे उतना हल्के होते जाएंगे। भारी किसने किया? खोटे कर्म ने, खोटे व्यवहार ने, आत्मा की अशुद्धि न, खाद निकलती जाएगी। और उसका प्रूफ क्या है? खुशी चढ़ती जाएगी, खोट निकलता जाएगा, शुद्धि आती जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी, पवित्रता बढ़ती जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी, बोझ हल्का हो जाएगा, खुशी रहेगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, सुखी भी थे और खुशी भी थे। खाद निकलती जाएगी, अच्छा तो खुशी में, सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते तुम्हारी खुशी गुम होती गई, पवित्रता कम होते होते। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी अथवा यात्रा में 5000 साल लगे हैं। इस स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता पड़ा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आ गए। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं, बाप से संबंध जुटाना, तो रियलाइजेशन एक सेकंड की। बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे ना। जैसे एग्जांपल, बच्चा पैदा हुआ, मालिक है, मालिक बन जाएगा, भले उसको ना भी अवेयरनेस हो परंतु वो बाप की प्रॉपर्टी का मालिक है। तो नशा चढ़ना चाहिए ना, तो बाप के बने हो तो बाप के बच्चे बने, बालक माना मालक बन गए, उसकी प्रॉपर्टी के मालिक है, ये मकान दुकान कार ये प्रॉपर्टी नहीं, जो बाप की प्रॉपर्टी है पवित्रता सुख शांति ज्ञान आनंद शक्ति, ये बाबा की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए तो नशा चढ़ना चाहिए ना, ये नशा उतरना क्यों चाहिए। तुम तो बड़े हो ना यानी समझदार हो ना, बेहद के बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसीलिए गायन है खाली खुश नहीं सुख की बात नहीं, इससे भी ऊंचा अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ तो बाप ही है ना, गोपी वल्लभ उनसे ही पूछो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई को तो जट आप समान मना देते हैं, बच्चों का काम ही ये है कि सब कुछ बुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी ही जयंती मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी दे करके जाते हैं, सुख के लिए स्वर्ग का मालिक बना देते हैं, तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। वो याद क्यों आती है, कंट्रास्ट है। जो माल खाए हुए है, टेस्ट लिया हुआ है ना, जो सुख लिया हुआ है, फिर वो नहीं है। जो चीज थी अब नहीं है, उसके विरोधी बात है, तो सुख याद आता है। दुख की दुनिया है याद है, गरीब बन गए शाहूकारी याद आती है, पतित बन गए पावन पावनता के संस्कार याद आते हैं। आत्मा ने माल खाया है ना, तो याद करती है बाबा हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। यानी आत्मा ने अनुभव किया है शांति और सुख का, तो माल खाया है। समझते हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्यंत का चक्कर का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। ये सृष्टि चक्र अनादि अनंत है, इसका एंड कभी होता नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र है, इसे स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भव है। इसने स्वदर्शन अपना दर्शन कराया, किसने प्राप्त कर सुख का वर्षा दिया, वो सब याद आएगा। तो जितना दूसरी बात जितना बाप को याद करेंगे उतने पाप वशम होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होते जाएंगे, पर नया कर्म नहीं करो, नया पाप कर्म नहीं जोड़ो। तुम जब कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, ये ब्रह्मा बाबा की निरंकारिता स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। बल से बाबा इनमें प्रवेश करता है, ये तो स्टूडेंट है ना, बाबा भी पढ़ रहा है जो बाबा पढ़ा रहे हैं। ये है नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो, कॉन्ट्रास्ट है। भक्ति मार्ग में कैसे याद करते थे और अब ज्ञान मार्ग में कैसे याद करते। वो भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग, रात दिन का फर्क है। कितने झांझ घंटे कीर्तन करते थे ना, कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, आवाज कितना होता है। यहां तो सिर्फ याद में रहना है। याद क्या रहे हम, आत्मा अमर है, मैं अमर आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूं। आत्मा का तख्त भी है, ऐसे नहीं कि अकाल मूरत सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूरत हो। अकाल मूरत आत्मा का ये भ्रकुटी तख्त है, तो जरूर भ्रकुटी में ही बैठेंगे ना। परमात्मा भी आकर के ब्रह्मा की भ्रकुटी में बैठेगा, पेट में थोड़ा ही बैठेगा, यानी माँ के गर्भ में नहीं आता। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूरत आत्मा का ये तख्त कहाँ है, भ्रकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा गाते हैं अकाल मूरत, पर उनके अकाल मूरत का तख्त कोई जानते नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है तख्त तो यही है ब्रह्मा का तन, जिस पर बैठ करके सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव ये अकाल तख्त रहता है। तुम समझते हो उन्होंने फिर तख्त बनाकर नाम रख दिया, लकड़ी का तख्त। वास्तव में अकाल तख्त आत्मा यहाँ बैठती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है, फिर वो ग्रंथ साहब में जहाँ रखा है जिस स्थान पर, उसको अकाल तख्त कहते हैं। तो बाप कहते हैं अभी तुम अर्थ समझते हो, वो मंत्र को पढ़ते हैं, पौड़ी पढ़ते हैं ग्रंथ साहब की, एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग, ये पढ़ते हैं। वो अकाल मूरत की महिमा करते हैं। फिर भगत लोग मंदिरों में जाके क्या कहते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर, फिर एक श्री कृष्ण की महिमा का चक्कर को याद करते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। ऐसा ही स्तुति करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायण, अब राम कहाँ और नारायण कहाँ, नारायण सतयुग में, राम त्रेता में। तो बाप कहते हैं सब भक्ति मार्ग है, ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने से पहले बाप और वर्षे को याद करना है, वह मेहनत कोई से होती नहीं है। बाबा को याद रहे, वर्षा याद रहे, भूल जाते हैं। ये भी एक नाटक है जिसमें माया का वंडर और परमात्मा का वंडर, माया क्या करती है परमात्मा क्या करते हैं, भगवान ऐसे करता है माया ऐसे करती। तुम बाप को याद करते हो और माया तुमको और तूफान में ले जाती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होके लड़ो, तो माया चैलेंज करती है। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो हम किस किस प्रकार के योद्धा हैं, हमारी वायलेंट वार नहीं है, हम किस प्रकार के योद्धा हैं। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम है, कोई फिर तीखे भी है। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त गुप्त अंडरग्राउंड, ये सूक्ष्म युद्ध है, वो भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं। तुम जानते हो ये सब मौत के लिए कर रहे हैं, सब कुछ मौत की तैयारी। तुम तो बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल, फिर कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनसे कोई कवच नहीं चल सकता, कुदरती आपदा को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बम्स बन रहे थे तो कहते हैं यूज नहीं करो, समुद्र में डाल दो, न्यूक्लियर वार नहीं हुए। मतलब कुछ कंट्रोल करना चाहते, प्रकृति पर तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी, मतलब विनाश के साधन तो तैयार है। अभी झूठी अच्छा प्राकृतिक में भी अगर कोई प्राकृतिक नहीं भी है उसको प्राकृतिक बनाने की कोशिश करते हैं। बरसात नहीं पड़ती तो झूठी बरसात के लिए कोशिश करते हैं। एक साइंटिस्ट आया था जर्मनी से, बादल क्रिएट कर फिर थोड़ी वर्षा करने के लिए, पर वो तो टेम्पररी प्रभाव होता है। झूठी बरसात पड़े न तो बरसात किस लिए चाहिए, अनाज ज्यादा होवे। तुम बच्चे तो जानते हो कि कितनी भी बरसात पड़े, चलो अच्छा वो झूठी बरसात भी हो जावे, फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज तो जरूर होनी है। सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, फिर तुम क्या कर सकेंगे? भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, प्राकृतिक आपदाएं, ये इसको गॉडली आपदाएं नहीं कहते हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज कहते हैं, नेचुरली आपदाएं। सतयुग में ये होती नहीं, यहां होती है। पांचों ही प्रकार की, बाबा ने कहा पांचों ही तत्व इकट्ठा डांस करेंगे। ये पांचों ही तत्व अपना खेल खेले, बाबा कहते हैं विनाश में मदद करती है, सफाई करते हैं ना। तो तुम्हारी बुद्धि में है, यानी अब प्राकृतिक आपदाएं सृष्टि की सफाई करने में मदद करती है, तुम्हारी बुद्धि में है। जब हम सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे, हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे, पॉपुलेशन कम होगी। कलप कलप ऐसे होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता है। वहां गंदगी की कोई चीज नहीं होती, यहां तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है। तो हिस्ट्री हॉल में चिड़ियां आ जाती थी, चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहां गंदगी तो बाकी तो बात ही नहीं, उसको कहा ही जाता है हेवन। एक बारी इतनी सारी चिड़िया इकट्ठी आ गई, ची 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 ची, इतना आवाज जो मुरली सुनना मुश्किल हो गया। तो बाबा ने कहा यहां तो एक कोई चीज खुशी भी देती है परंतु साथ साथ ये गंद भी करती है, शोर भी बचा रही है। इनको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी तुम समझते हो हम पावन देवता थे, तो ये स्मृति अंदर में खुशी आनी चाहिए ना। ये माया जिन है, भूत है। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, शांति धाम जाओ, सुख धाम आओ, फिर शांति धाम जाओ, बेहद दुख के वैराग, दुख की दुनिया से वैराग त्याग, जाओ और आओ। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम इस धंधे में, रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भव, बस इसमें ही जिन बन जाओ, खुद ही जिन बन जाओ, ऊपर जाओ नीचे आओ। जिन का मिसाल देते हैं ना कि जिन ने कहा मुझे काम दो नहीं तो खा तुमको खा जाऊंगा, तो बाबा भी तुमको काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है, बाप अकेला तो नहीं करेगा ना स्वर्ग की दुनिया की स्थापना, बाप तो राज भी नहीं करता है। तुम सर्विस करते हो तो राजाई भी तुम्हारे लिए है। बाप कहते हैं मैं मगध देश में आता हूँ, माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप कर जाती है, खा जाती है। अब ये सब दुश्मन है, जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, सर्प मेंढक को हप कर लेते हैं, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। ये माउंट आबू में अपना नक्की लेक पर, अभी तो वो सीन ही चेंज हो गया, जहाँ आर्य समाज का मंदिर बना हुआ है, तो नक्की लेक से इस तरफ पुल के आगे जो थोड़ा पूरा पुराना गंदे गंदा पानी वहां जाता था, तो वह तालाब जैसा बन गया हुआ था, पर कीचड़ भी बहुत था तो पानी भी था। तो बाबा एक दिन लेके गए घुमाने के लिए, पुल पर खड़े थे तो छोटा सा मेंढक कूद रहा था और सांप भी हुआ था, तो सांप ने मेंढक को हप कर लिया। अब वो देख के कैसा लगा, ये तो अच्छा सीन नहीं है। बाबा ने कहा बच्ची देखो देखो वेट करो, ये सांप अभी योग लगाएगा। कहा बाबा सांप योग लगाएगा तो सतयोग भी आ जाएगा, सांप कैसे योग लगाएगा। तो बाबा ने कहा देखो ये सांप गल मुंडी बांट के बैठ गया, जब तक ये मेंढक गला नहीं है ना तब तक ये इधर उधर मूव नहीं कर रहा है सांप। सांप में भी इतनी अक्कल है, तुम बच्चों के अंदर कोई बात आती है ट्रा ट्रा करने वाली, क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेंढक, ये मेंढक कूदता है, बस ऐसे मेंढक कूदने लगे तो बाबा की याद में बैठ जाओ, तपस्या बनकर तपस्वी बन के बैठ जाओ। इतना अकल तो सांप में भी है, फिर ये तो अकल सीखो। तुमको मालूम है ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान, एक तो देह अभिमान में कभी नहीं आना है, पापों से मुक्त करना, देह अभिमान को छोड़ना है। दूसरी बात, दूसरा पुरुषार्थ, इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। एक्सप्लेनेशन, बाप द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने जो प्राप्त होते हैं उसके लिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर नाचने लग जाते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो, आप तो चैतन्य में प्राप्त कर रहे हो, खुश नसीब हो, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। खजाने तो बाबा ने सब दिए, चाबी को सदा सामने रखो। कौन सी चाबी? खजानों की स्मृति का मंथन सदा स्मृति में रखो। स्मृति स्वरूप हो जाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। अतीन्द्र सुख अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आत्माओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। अव्यक्त शरण, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहे बाहर मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभव के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं, अथाह अनुभव है, अनेक प्रकार के अनुभव हैं। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, सागर के बच्चे अनुभव के सागर में समा जाओ। आज का मम्मा का अव्यक्त पॉइंट, विशाल हृदय के गुण से सदा सहनशील से शक्ति संपन्न। मम्मा का हृदय बहुत विशाल था, उन्होंने कभी छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं रखा। ये छोटी छोटी बात दिल में रखना माना दिल को छोटा कर देना, डिसहार्टेंड हो जाना। कोई ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, उसका चिंतन नहीं किया, वर्णन की तो बात ही छोड़ो। सब कुछ सहन करते, सबके प्रति शुभ भावना रखी, सबको अपनेपन की अनुभूति कराई, तो सबने दिल से माना मेरी मम्मा। ऐसे ही हम सबको भी विशाल हृदय रख करके हर एक की बात समानी है और सहन करनी है। संभालो, चिंतन नहीं करो, सहन कर लो। सबको अपनेपन की वासना देनी है। ओम शांति।